शायद उस गोली का ही असर था कि मेरा मन बहुत चंचल होने लगा। मेरे पूरे जहन में न जाने कैसे कैसे भाव उफान मारने लगे। मुझे उस समय डॉक्टर अतुल पर बेतहाशा प्यार उमड़ने लगा। मेरा मन कर रहा था कि जब डॉक्टर अतुल कमरे में आएंगे तब मैं उनको बुलाकर पकड़कर खींचकर पलंग पर लिटा दूंगी और कपड़े निकालकर पहले तो उनका लंड खूब चूसूंगी, फिर मुझ पर चढ़ा लूंगी और खूब चूदूंगी उनसे। रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक उठी। कमरे मैंने अंधेरा रखा था, फिर भी बाहर खिड़की से कुछ प्रकाश आ रहा था। मैंने दबी आवाज़ में कहा, अंदर आ जाइए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो मैंने कहा, काफ़ी लाइट है, बत्ती मत जलाओ, मैं जाग रही हूँ। डॉक्टर अतुल मेरे पलंग के करीब आए तो मैंने उनका हाथ पकड़कर पलंग पर बिठा दिया। मैंने कहा, आपके जाने के बाद मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये कहकर मैंने डॉक्टर का हाथ मेरी छाती पर रख दिया। इस बार तो मैंने ना तो ब्लाउज पहना, ना ही ब्रा, ना ही कोई चुन्नी, बल्कि मेरी नाइटी के ऊपर भी बटन खुले हुए थे। डॉक्टर अतुल का हाथ अनायास ही मेरे चिकने फिसलन से भरे सख्त स्तनों को छू गया। मैं सिहर उठी। मैंने महसूस किया कि डॉक्टर अतुल भी मेरे स्तनों के नर्म स्पर्श से बौखला कर चौंक उठे। मैंने उनका हाथ मेरे स्तनों पर दबाए रखा। उन्होंने भी हाथ हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने महसूस किया कि शायद ना चाहते हुए भी वो अपनी उंगलियों से मेरे स्तनों को दबाकर उनकी सख्ती और नरमी दोनों का अनुभव करने लगे थे। डॉक्टर कुछ देर तक अंधेरे में ऐसे ही बुद्ध की तरह बैठे हुए मेरे स्तनों को अपनी हथेली में महसूस करते रहे। उनकी उंगलियां मेरे निप्पल से खेलती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल की धड़कनें गिन रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा, पता नहीं मेरे पूरे बदन में क्या हो रहा है, अब मैं आपके गले पड़ गई हूँ। जो भी हो, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। डॉक्टर अतुल अपने आप को संभालते हुए बोले, देखो कोई बीमारी नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम राज की बीमारी से परेशान हो, मेरे लिए तुम क्या सोचती हो मैं समझ गया हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बस चिंता मत करो। पर याद रखना कि ये अस्पताल है, घर नहीं। यहाँ मैं एक खास पोजिशन में हूँ, अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो खड़े हुए और एक बार मेरा हाथ थाम कर मुझे दबाते हुए बोले, डॉक्टर अतुल ने साफ इकरार किया कि वो मेरी तरफ काफ़ी आकर्षित हैं। मैं हर रोज़ सुबह लगभग 8 बजे के करीब अस्पताल की कैंटीन से चाय मंगवा कर घर से आया हल्का फुल्का नाश्ता कर अस्पताल से कमरे की उस तरफ निकलती और घर जाकर नहा धोकर अपने लिए दोपहर का खाना बनाकर वापस करीब 11 बजे तक आ जाती। दिन भर राज के लिए दवाई या जो भी कुछ ज़रूरत होती मैं देखती रहती। शाम को राज से करीब 5 बजे मिलकर मैं फिर घर चली जाती। अगले दिन वही काम। एक दिन सुबह कमरे में चाय और नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए कैंटीन वाला लड़का आया। मैंने चाय ली। उस लड़के के हाथ में पॉलिथीन में लिपटा कुछ सामान देखकर मैंने पूछा तो उसने कहा, डॉक्टर अतुल ने कॉफ़ी नाश्ता लेकर जा रहा है। उस समय सुबह के 8 बजे थे। डॉक्टर अतुल को सुबह 6 बजे ही काम खत्म करके घर जाना चाहिए था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर अतुल कैंटीन का नाश्ता करके ही घर जाते हैं, दोपहर में भी वो कैंटीन का खाना खाते हैं। लड़के ने बताया कि वो शादीशुदा तो हैं पर सब कहते हैं कि उनकी बीवी से नहीं बनते तो वो अकेले रहते हैं। मेरे मन में उथल पुथल उठी कि आखिर क्यों डॉक्टर अतुल शादीशुदा होते हुए अकेले रहते हैं। मैंने उस लड़के से डॉक्टर अतुल के नाश्ते का पैकेट और कॉफ़ी ले ली और उससे कहा कि वो जाकर डॉक्टर अतुल से कहे कि उनके नाश्ते का पैकेट मेरे पास है और मेरे साथ नाश्ता करें। डॉक्टर अतुल कमरे में आए तो मैंने उनके नाश्ते की प्लेट में सैंडविच और कॉफ़ी रख दी। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठकर खाने लगे मैंने उनका हाथ पकड़कर कुछ गुस्सा दिखाते हुए उनसे पूछा, मुझे कैंटीन वाला लड़का बता रहा था कि आप हर रोज़ यही नाश्ता करते हैं और यहीं का खाना भी खाते हैं, क्यों घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है क्या? ऐसे ही बासी कचरा खाना रोज खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर मेरे पति का ख्याल रखते थे तो मेरे फर्ज था कि मैं डॉक्टर का ख्याल रखूं। मेरा गुस्सैल चेहरा देखकर डॉक्टर अतुल कुछ देर के लिए तो झेप गई, फिर थोड़ा सा संभल कर बोले, नीना तुम तो मेरी माँ की तरह मुझे डांटने लगी हो। मैं राज की तरह लकी नहीं हूँ कि तुम्हारी जैसी बीवी मेरा ख्याल रखे, अकेला रहता हूँ। मेरी बीवी तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करके उसके रईस पिता के पास करोड़ों की मालकिन बनकर बैठी है, मुझे तो इसी से काम चलाना पड़ेगा ना। मैं डॉक्टर का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। खड़ी होकर अतुल के कान पकड़कर बोली, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी घरेलू समस्या है, पर मुझे आपको इस तरह अपनी सेहत का ख्याल न रखने के लिए डांटने का हक है। कल से आप इस कैंटीन का खाना नहीं खाएंगे और जब तक हम यहाँ हैं मैं आपके लिए सुबह का नाश्ता और रात का खाना ले आऊँगी। दोपहर के खाने के लिए देखूँगी कि क्या हो सकता है। बाद में आप अपने घर किसी खाना बनाने वाले को तो रख ही सकते हैं ना। मैं खुद तो रोज खाना बनाने नहीं आ सकती, पर किसी को रखवा दूंगी। डॉक्टर बोले, ठीक है, और चुपचाप एक मुंडी हिला दी। फिर बोले, नीना ये सब तकलीफ, मैंने उनके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, खबरदार आगे बोले तो। हमने तय किया था कि कोई औपचारिकता नहीं होगी, चुपचाप मान जाओ। पति की दवाई, डॉक्टर से आंख लड़ाई। मैं आपने पढ़ा कि कैसे मेरे पति के अस्पताल में दाखिला कर उनकी ट्रीटमेंट कराते हुए मैं एक मस्त डॉक्टर के जाल में फंसने लगी थी और उसे भी फंसाने लगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, नीना अब तो तुम मुझे डांटने लगी हो जैसे तुम मेरी बीवी हो, तुम जो खिलाओगी मैं खा लूँगा। उनके आँखों से और चेहरे से प्यार की झलक देख कर मैं फूली नहीं समाई। मैंने उनका सिर अपनी छाती से सटाते हुए प्यार से हल्का सा गुस्सा दिखाया और कहा, जब आपकी बीवी अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही तो क्या आपकी बहू या आधी बीवी होने के नाते आपकी बीवी की कमी पूरे करने का मुझे कोई हक नहीं है? आप हाँ कहो या ना, मैं यहाँ नहीं तो कहीं और अपना फ़र्ज पूरा करके रहूँगी। मेरे पति भी यही चाहते हैं। उसमें पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने शरारती लहजे में कहा, डॉक्टर अगर मैं आपकी पूरी बीवी होती तो डांटती ज़रूर पर प्यार भी तो करती। रात भर प्यार के बजाय यहाँ इस तरह आपको नाइट ड्यूटी थोड़ी करने देती। इस बीच में आपके लिए खाना बनाने के लिए कोई रसोई वाली मेड भी अब ढूंढ देती हूँ, जब तक मैं खाना लाती रहूँगी। पर दिक्कत यह है कि आपका भी तो कोई ठिकाना नहीं, कब घर जाते हो कब घर से आते हो, टाइम भी तो देखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चाबी भी लेनी पड़ेगी। डॉक्टर अतुल ने कहा, कई बार मैं घर से बाहर निकलते हुए चाबी ले जाना भूल जाता हूँ और दरवाज़ा बंद करते ही लॉक हो जाता है, इसलिए चाबी हमेशा दरवाजे के बाहर एक गमले के अंदर रख देता हूँ, वहाँ से तुम जब भी चाहो ले सकती हो। फिर उन्होंने मुझे हल्का सा खिसका कर अपने से अलग करने की कोशिश की, पर मैं बिना हटे वहीं डटी रही। तो उन्होंने कहा, एक औरत ने मेरा घर उजाड़ दिया है, मैं तुम्हें रात से अलग करके राज का घर नहीं उजाड़ना चाहता। हंसी मजाक की जगह माहौल गंभीर होने लगा। मैंने उनकी आंखों में झांक कर बड़ी गंभीरता से कहा, डॉक्टर आपने मुझे मेरे पति की ज़िंदगी बचाने का वचन दिया है, मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं आपका घर नहीं उजड़ने दूंगी। मेरी इस तरह बिंदास बातें सुनकर डॉक्टर हक्के बक्के रह गए। मैंने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाई और अतुल को अपनी बाहों में भर लिया। डॉक्टर मेरी सांसों की धड़कन और मेरी छाती के ऊपर नीचे होने का एहसास अपने सर कपाल और गालों पर कर रहे थे। वो मेरे भरे हुए ऊपर से काफ़ी खुले हुए स्तनों को भी उत्तेजना के मारे ऊपर नीचे होते हुए देख रहे थे। कुछ लज्जा के कारण और कुछ डॉक्टर अतुल की बेचैनी को ध्यान में रखते हुए मैं पीछे हट गई। डॉक्टर ने फिर से वही पुरानी खिसियानी शक्ल बनाते हुए कहा, एक तरफ तो तुम मुझे अपना बच्चा या पति जैसा कहती हो और दूसरी तरफ मुझे आप कहकर बुलाती हो। तुम मुझे आप कहोगी तो फिर तुम्हें मैं मिसेज राज कहूँगा। मैंने अपने कान पकड़कर फर्श पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अपने पति जैसा या उनसे भी बड़ा मानती हूँ, तुम या तू नहीं कह सकती, प्लीज़ दोबारा मत कहना। उस समय मेरा मुंह डॉक्टर अतुल की पतलून में छिपे लंड के बिल्कुल सामने था। मेरा मन तो कर रहा था कि जिप खोलकर बाहर निकाल कर अपने हाथों में उसे पकड़कर चूस लूँ, पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोकना पड़ा। डॉक्टर अतुल स्तब्ध से हो गए, मुझे खींचकर अपनी बाहों में जकड़कर सीने से लगाते हुए कहा, नीना ऐसा मत करो, अनजाने में बोल पड़े, माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी शब्द से पहले उन्हें बड़बड़ाते हुए क्या बोला ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने संकोच अतुल के सीने से कसकर खड़ी हो गई और सीना रगड़ते हुए कहा, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि प्यार करने वाले माफ़ी नहीं मांगते। मेरी बिंदास हंसी और बर्ताव देखकर वो भी हंस पड़े और बोले, तुम बिंदास हो, जो मन में आए वो बोल देती हो। तो उन्होंने कहा, अब मैं घर जा रहा हूँ, कुछ देर सो जाऊँगा, तुम घर से खाना लेकर यहीं वापस आ जाना, मैं नहा धोकर दोपहर के करीब 1 बजे तक वापस आऊँगा, हम यहीं खाएंगे। मैंने कहा, आप लेट हो गए तो मैं आपके घर आ जाऊँगी। अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चाबी कहाँ रखी है ये तो तुम जानती ही हो। डॉक्टर को नाश्ता करा कर मैं अस्पताल से घर आ गई। कहानी पर अपने विचार भेजते रहिए और सुनते रहिए।